Market Mantra. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Sonu Sood.
धन्यवाद लालिमा. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें आप तक लाते हैं और उन पर चर्चा भी करते हैं. चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित है आर्थिक विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
आप दोनों को नमस्कार.
नमस्कार.
नमस्कार. और अब हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रही हैं लालिमा अनेजा डैंग.
Thanks, Sonu. Yes, friends, let's begin with the headlines right away. Benchmark domestic indices log losses. Sensex falls 31 points. Nifty settles below 26,000 level. Asian stock markets end mixed and global crude oil prices rise.
प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक गिरावट में रहे. सेंसेक्स 31 अंक टूटा. निफ्टी 26,000 के स्तर से नीचे आ गया. एशियाई शेयर बाजारों में रुख मिला जुला रहा और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई वृद्धि.
Well, before we move on, here's an announcement for all our listener friends. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
और आइए अब चलते हैं शेयर बाजार की ओर. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज लगातार चौथे सत्र मंदी दर्ज करते हुए मामूली गिरावट पर बंद हुए. कारोबारी सत्र के दौरान पूरे समय सूचकांक दबाव में थे. हालांकि कारोबार के आखिरी घंटे में मामूली सुधार देखा गया. इसके बावजूद अधिकांश सेक्टर्स में चौतरफा बिकवाली के चलते बाजार गिरावट पर बंद हुए. सेंसेक्स 31 अंकों के नुकसान से 85,107 पर आ गया और निफ्टी 46 अंकों की गिरावट से 25,986 पर बंद हुआ. बंबई शेयर बाजार के विस्तारित बाजार सूचकांक भी आज नुकसान में रहे. मिड कैप सूचकांक 0.9% से अधिक की गिरावट में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% से अधिक गिरकर बंद हुआ.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस द सेंसेक्स एंड द निफ्टी एंडेड मार्जिनली लोअर टुडे, मार्किंग अ फोर्थ कंसेक्यूटिव सेशन ऑफ लॉसेस. द इंडिसेस रिमेन्ड अंडर प्रेशर थ्रू आउट द ट्रेडिंग सेशन, ऑल्दो अ स्लाइट करेक्शन वाज ऑब्जर्व्ड इन द फाइनल आवर ऑफ ट्रेड. डिस्पाइट दिस, द मार्केट्स क्लोज्ड लोअर, ड्रिवन बाय अ ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ अक्रॉस मोस्ट सेक्टर्स. द सेंसेक्स डिप्ड 31 पॉइंट्स टू क्लोज एट 85,107, व्हाइल द निफ्टी फेल 46 points to settle at 25,986. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also edged down. The mid-cap index lost over 0.9%, while the small-cap index declined over 0.4%.
सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 20 के शेयर आज गिरावट में रहे. सबसे अधिक गिरने वाले शेयरों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का शेयर 2.1% से अधिक लुढ़क गया. टाइटन के शेयर में 1.9% के करीब गिरावट आई और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में 1.8% का नुकसान दर्ज हुआ. सबसे अधिक बढ़ने वाले शेयरों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शेयर 1.4%, आईसीआईसीआई बैंक का लगभग 1.4% और इन्फोसिस का शेयर 1.1% से अधिक के उछाल में रहे.
अक्रॉस सेक्टोरल इंडिसेस एट द बीएससी, 16 आउट ऑफ 21 सेक्टर्स एंडेड विद लॉसेस. अमंग द की डिक्लाइनर्स, कैपिटल गुड्स स्लिप्ड 1.3%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स डिप्ड ओवर 1.2% and auto dropped over 1.1%. Among the top gainers, focused IT as well as IT both gained 0.8%. Tech rose 0.4% and telecommunication added 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,681 companies declined, 1,481 advanced and 154 remained unchanged.
रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 32 पैसे कमजोर हुआ और 90 रुपए 19 पैसे प्रति डॉलर के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ. दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 99.01 पर था. क्या कहेंगे आप, लगातार चौथा दिन है जब सेंसेक्स में गिरावट आई है, लेकिन बहुत ही मामूली नगण्य सी गिरावट है आज. हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में हम जरूर ज्यादा गिरावट देख रहे हैं. तो अभी बाजार की जो ये गिरावट का दौर है, इसको आप कैसे देखते हैं? कंसोलिडेशन है, प्रॉफिट बुकिंग है या कुछ और कारण है?
नहीं देखिए सोनू, मैं एक बात ब्रॉडली एक तो ये बोलूंगा कि चूंकि मार्केट है तो मार्केट कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी, क्योंकि स्टैटिक रहेगी तो फिर वो बाजार नहीं रहेगी. और जहां तक रीजंस की बात है, मुझे लगता है एक बड़ा कारण अभी भी जो है वो दबाव आ रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का. आज भी वो दबाव देखा गया. और दूसरा जो अनिश्चितता अभी हम अमेरिका में देख रहे हैं, खासकर जो उनके फेड के जो अब इंटरेस्ट रेट्स 9 या 9-10 तारीख को जो मीटिंग है फेड, हाँ फेड की जो 2 दिन की मीटिंग है, तो 10 को वो अनाउंसमेंट आना है. और एक ये इस तरह की एक धारणा या अभी तक जो वो बन रही है कि शायद वो इंटरेस्ट रेट एक बार और कट करें. हालांकि मेरे को लगता है कि इस हफ्ते में 2-3 क्रूशियल डेटा जो यूएस में आना है, एक इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आना है सितंबर में, प्लस एक डेटा जो फेड देखता है जिससे वो इन्फ्लेशन को गेज करता है या नापता है, तो वो एक डेटा आना है सितंबर का. साथ साथ जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट का डेटा यूएस में, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट और एम्प्लॉयमेंट दोनों डायरेक्टली लिंक्ड हैं. जैसे हमारे यहाँ हम लोग इन्फ्लेशन और ग्रोथ को वो देते हैं इम्पोर्टेंस, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन आर लिंक्ड, तो वो फोकस में रहता है. तो मुझे लगता है वो भी एक कारण है. साथ साथ बैंक ऑफ जापान में भी इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ जापान का आना है. साथ साथ कहीं ना कहीं हम जो कमजोरी जो अर्थव्यवस्था में चाइना में भी दिख रही है कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है वो सब कारण भी कहीं ना कहीं हमारी बाजार पे असर करते हुए दिख रहे हैं.
बस एक चीज आपसे पूछनी थी कि जो यूएस में आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक डेटा आने हैं और यूएस फेड का डिसीजन भी आना है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर ये डेटा कमजोर आते हैं तो यूएस फेड द्वारा इंटरेस्ट रेट में कटौती करने की संभावना बढ़ जाती है.
बिल्कुल निश्चित तौर पर, अगर मतलब वो तो इट इज ऑल
वेरी आयरोनिकल.
हाँ नहीं, और आयरोनिकल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड. अगर इंटरेस्ट रेट्स में जो भी मूवमेंट है, इट इज़ ऑब्वियसली लिंक्ड टू दी डेटा ड्रिवन है बेसिकली. तो अगर एम्प्लॉयमेंट डेटा खराब होगा तो ऑब्वियसली इट पुशेस देम टू कट रेट्स फर्दर. अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है देन दैट्स अ नेगेटिव फॉर देम, whether they should cut interest rate, still cut or not. So it all depends on the data, industrial production का भी data आना है. तो मुझे लगता है वो एक बड़ा कारण होगा. और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा, जब हमारा जो Q2 का जो GDP data अभी आया, तो उसमें जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो उनकी कॉमेंट्री थी, तो उसमें भी उन्होंने यही बोला कि जो हमारे GDP को या हमारी जो ग्रोथ को रिस्क है वो बाहर से आ रहा है. तो जो किस तरह से दी आउटसाइड वर्ल्ड जो अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, तो एक अभी भी कहीं ना कहीं वो पैटर्न जो है ना वो सेटल नहीं हो पा रहा है. साथ साथ
हालांकि 8.2% आया वो तो बहुत
जी नहीं, तो वो
है.
हमारी देर इज नथिंग इन आर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल विच इज वरिंग, बट यस हमारा जैसे यूएस के साथ जो ट्रेड डील होनी है तो वो भी कहीं ना कहीं अभी हुई नहीं है. ये ऐसी आशाएं बन रही हैं कि हो जाएगी जल्दी.
But once the Sensex touched 86,000 and now we see it's after 4 consecutive days of going down, it's at 85,107. It's down but not too bad, I think. One can still say that it's having touched 86, this is not too bad a figure. Also, Siddharth, when you talk about the external factors, internally our economy is pretty strong considering the fact that inflation is under control, the fiscal parameters are healthy, the bank and corporate balance sheets are clean and economy is growing fast.
No, see, as far as Lalima, our own internal dynamics are concerned, I don't see our macroeconomic fundamentals are completely, I would say, terrific. We are in the best of times. So there was so much of voice was a concern raised when we had a problem with the, in terms of US tariffs, huge tariffs, 50% tariff. Mm. And despite that, economy in the first half of the current financial has grown by 8%. So now the expectation is that definitely we will be 7% plus for the entire year. Yes, you are right. In terms of, you look at any inflation, obviously is very, very low. So which again is something that is very positive for us. Inflation, GDP numbers are good. Our forex reserves are very good despite our currency taking a hit. But yes, there is nothing to worry because we have almost $700 billion of reserves, forex reserves. So in terms of our food grain production, our stocks, so I think everything is positive, the kind of capital expenditure. And also now we are getting to see a pickup in private investment also, which was something which has been, you know, been talked about, a lot of concern. So slowly we are seeing a pickup there also.
और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आईटी सेक्टर, टेक सेक्टर में फिर से तेजी हम देख रहे हैं. आज सबसे ज्यादा बढ़ने वाले सेक्टर्स रहे हैं भारतीय बाजार में, आगे चलकर हम देखेंगे यूएस बाजार में भी. सो आपको लगता है कि अब जो एक पहले बूम आई थी, फिर बीच में हमने एक डाउन टर्न देखा था, फिर स्टेबिलिटी आ रही है?
सोनू, अभी मुझे लगता है जल्दबाजी होगी. हाँ, उन्होंने हिट बहुत ज्यादा ली थी तो शायद थोड़ा कवरिंग हुई है उन सेक्टर्स में. बट मुझे लगता है अभी वो क्लैरिटी, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके रोज कुछ ना कुछ नया एक वो आती है. और अभी एक व्यू ये भी आ रहा है कि इट इज बीइंग ओवर हाइप्ड. तो वी डोंट नो, आई थिंक इट विल स्टिल टेक टाइम. बट यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे लगता है इज ऑल्सो हेयर टू स्टे. वॉट इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट, हाउ मच इम्पैक्ट, एंड पॉजिटिव, नेगेटिव. सो आई थिंक ऑल दोज क्लैरिटी, इट विल टेक सम टाइम फॉर दैट टू सेटल डाउन, एंड देन ओनली प्रॉब्ली. बट यस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आई टी इज अ सेक्टर विच नाउ टचेज एवरीबडी, ऑल ऑफ अस, एंड विल कंटिन्यू टू टच इट. द इट्स रोल इन आर लाइफ विल ओनली गो अप. आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू कम डाउन. सो ऑब्वियसली दी स्टॉक्स, एंड आई वुड से इन एज फार एज इंडियन मार्केट्स आर कंसर्न, इंडियन आई टी कंपनीज, आई थिंक दे आर इन बेस्ट ऑफ हेल्थ. दे हैव ह्यूज वर्क ऑर्डर्स, बैलेंस शीट इज गुड. सो आई थिंक, एंड द मंत्रा आई ऑलवेज से इज फॉर पीपल हु आर कमिंग टू द मार्केट्स इज कम, स्टे इन्वेस्टेड, डू योर होमवर्क वेल, लुक एट द मैनेजमेंट, लुक एट द कंपनी, एंड डोंट कम फॉर मेकिंग मनी ओवर नाइट ऑफ इन शॉर्ट टर्म.
Sonu, just read the news about the rupee being depreciated by 32 paise. Talking about exports, imports, Siddharth, US tariffs on the Indian businesses has been confined to just gems, jewelry, garments. But how do you view which way have the exports, imports gone? We must also consider the fact that the government has been into I could call it overdrive or right drive, having FTAs with many other countries. If it is not just US, it's others which have come to the focus, like Vietnam and other countries.
See, Lalima,
has that paid off?
Yeah. So I think what we have done is obviously this, since Donald Trump became US president, this issue obviously came to the fore, and we were expecting that there would be tariffs on us also, high tariffs. And it was not only us, I think there are several other countries which have been impacted. But yes, we got hit more because there was 25% extra tariff because of buying Russian oil. Mm-hmm. So I think in that way, yes. But I think the strategy of the government has been multi-pronged. We have kind of now, we are supporting the sector also, looking at newer markets, looking how more easily credit can be facilitated, how to help them brand, build their exporters, build their brands, how to help MSMEs in terms of bettering their storage facilities. So I think, and we recently only the government announced two schemes for export promotion. Plus, I think, as you said also, we are now in a very aggressive manner. We are pursuing these free trade agreements. So I think we have already done with UK. We are pursuing with Oman, Chile. Mm-hmm. And then I think the one that we are very close, we've already done a lot of work has been done, I would say, in the FTA with the European Union.
Exactly.
So, and then our trade and commerce minister, Mr. Piyush Goyal, was recently in New Zealand. So I think that's a multi-pronged strategy. It is not, and that is also paying off. If you see, after despite US tariffs, our exports have not been impacted so much. And also in a very short span, we have seen our exporters already getting into newer markets.
राइट
सिद्धार्थ, इससे पहले कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर चले, आपकी छोटी सी टिप्पणी, दिसंबर महीना है, इस कैलेंडर वर्ष का अंत हो रहा है और वहां पे हॉलिडे सीजन होता है वेस्टर्न कंट्रीज में, तो अभी आपको क्या लगता है FIIs का क्या रुख रहेगा हिस्टोरिकली, क्या और विड्रॉल्स होंगे या हम क्या आशा करें?
नहीं सोनू, अभी एक तो ये जो अभी तक ट्रेंड है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि FIIs बड़े जोश खरोश से हिंदुस्तान की बाजार की तरफ देख रहे हैं, आ रहे हैं, देव बीन इन्वेस्टिंग, बट अगर आप लेटली देखेंगे तो वो IPO मार्केट में बहुत एक्टिव है, सेकेंडरी मार्केट से ज़्यादा मैंने देखा। अगर आप डेटा भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमने देखा है FIIs IPO मार्केट में भी एक्टिव है, ठीक है। एंड अभी और जो आपने बात की कि वहाँ ऑब्वियसली क्रिसमस हॉलीडे आ रहा है, तो वो एक टाइम होता है यस कि उनका जो वो एक्चुअली हॉलीडे मूड में चले जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक दूसरी बात, जो दूसरा फैक्टर मेंशन करना चाहूँगा, इस पिछले एक साल में या पिछले 10-11 महीने में बाजार में ऑलमोस्ट $15 बिलियन की सेलिंग की FIIs ने, लेकिन उसके बावजूद इंडियन मार्केट्स आर इंटैक्ट।
सो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स,
तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एज वेल एज आई वुड से ऑल्सो द कॉन्फिडेंस ऑफ आर रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि जब भी हम देखते थे बाजार से FII विड्रॉ करते थे तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी चोट पड़ती थी, उन पे बाजार बहुत तेजी से गिरती थी, तो वो फिनोमेना अभी दिख नहीं रहा है।
दिस शोज द रेजिलियंस ऑफ आवर इकॉनमी नाउ ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स।
यू सेड इट।
आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। अन्य एशियाई शेयर बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। जापान का निकेई सूचकांक 1.1% से अधिक के उछाल में रहा। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1% की वृद्धि दर्ज हुई और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक लगभग 0.4% की बढ़त में रहा। दूसरी ओर हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 1.3% की गिरावट में रहा और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.5% से अधिक गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां भी रुख दिन के कारोबार में मिला जुला था। ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.1% से अधिक गिरावट पर था। फ्रांस के कैक में मामूली मंदी थी और जर्मनी का डैक्स 0.1% से अधिक बढ़ गया था।
A look at the US markets now. Wall Street closed higher yesterday, driven by gains in technology stocks. Expectations grow that the Federal Reserve will cut interest rates next week. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index gained 0.6%, the Dow Jones Industrial Average rose 0.4%, and the S&P 500 added over 0.2%. 2%.
क्या कहेंगे आप, जो रिसेशन के फियर्स थे US में, स्लो डाउन के फियर्स थे, वो अब लगता है कि शायद वैसा नहीं होगा?
नहीं, अभी फिलहाल तो लालिमा बीच में ये बातें जरूर आई थी, बट अभी ऐसा देखने में नहीं, ऐसा लगता नहीं है। बट यस, हाउ थिंग्स विल पैन आउट, आई थिंक वी स्टिल नीड टू वेट एंड वॉच, बिकॉज US पर टैरिफ्स का खुद कितना असर हो रहा है, जो उनकी हाई टैरिफ्स है, जैसे बीच में उनके यहाँ भी इन जो आम जरूरत की चीजें हैं रोजमर्रा की, उन पे उनकी प्राइसेस सॉ स्टीप, या सो एंड दैट इज वाज द रीजन व्हेन वी सॉ प्रेसिडेंट ट्रंप कटिंग द टैरिफ्स ऑन एंड दोज वर आइटम्स व्हिच वर बीइंग एक्सपोर्टेड बाय इंडिया। तो मैं पहले भी ये बात मैं कह चुका हूँ, क्योंकि उनको भी कुछ हमारी चीजों की आदत लग गई, एंड देयर इज अ ह्यूज इंडियन डायस्पोरा ऑल्सो इन US, तो मुझे लगता है। और दूसरा जो बात आपने कही, अभी मुझे जो डेटा आ रहा है उस हिसाब से ऐसा संकेत तो नहीं है कि कोई वहाँ पे उस तरह का भी रिसेशन, बट इट लॉट विल डिपेंड हाउ फेड रिएक्ट्स एक्ट्स इन टाइम्स टू कम, प्लस द न्यू फेड चेयर विच डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग, ऑब्वियसली जेरम पॉवेल का टर्म खत्म हो रहा है मई में, तो अब देखते हैं अगला फेड गवर्नर कौन बनता है।
It is said that a third of drugs, pharma drugs, pharmaceutical drugs in US go from India.
Yeah.
So they have to be careful as to where to put tariffs and how much. All right, moving on. A 40-member European Union negotiating team will arrive in New Delhi tomorrow, making the most intensive phase of the India-EU free trade agreement discussions. EU ambassador to India, Herb Delphin, speaking at India's World Annual Conclave 2025 today, said the current negotiations represent a fundamentally new phase, calling them EU-India FTA negotiation 2.0.
They have made really progress. The arithmetic is 11 chapters closed so far out of 23. Many more are almost at closing stage.
बहुत ही जटिल होता है कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इतनी जो प्रगति हो रही है, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले ही मेंशन किया था, इतने सारे देशों के साथ ये एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन आपको लगता है बहुत बड़ा एक हमारे लिए मुद्दा है जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को इंटैक्ट रखेगा इन जो अभी टर्मोइल है इंटरनेशनल सिचुएशन में उसके बीच भी?
मतलब सोनू, जब से ये नया जो एक वर्ल्ड ऑर्डर आया है जहाँ पे वी आर सीइंग दिस डिसरप्शंस हो रहा है, तो उसके बाद से ऑब्वियसली यस दी नेशंस आर फोकसिंग ऑन बायलैटरल ट्रेड एंड दैट इज व्हाट दी स्ट्रेटजी ऑब्वियसली वी हैव आल्सो अडॉप्टेड एंड दैट इज व्हाई वी कंक्लूडेड एज FTA विद UK एंड नाउ दिस इज अनदर बिग FTA. वी आर ऑल्सो निगोशिएटिंग अ ट्रेड एग्रीमेंट विद US डिस्पाइट द टैरिफ्स एंड एवरीथिंग. वी वर सपोज टू हैव completed, we have almost completed the negotiations and I think that announcement should also come, that good news should come. And if this is obviously with European Union, if you look at the size of trade, it's almost 200 billion euros in terms of goods and services that we, the bilateral trade we have with European Union. And in terms of GDP, if you look at the two geographies, they are almost 25% of the globe. So it's a very big share. As the EU ambassador, we heard him just talking that out of the 23 chapters, I think 11 chapters have already been done. And the target or the aim is to conclude the FTA by the year end. So I hope, and the 40 member delegation obviously shows the seriousness and the detailing and the intent. So I think, obviously India being a big market, and we also obviously export to them gems, jewelry, IT, pharmaceuticals, IT to obviously is percolates all across the globe, India being the leader. That's why I said it, Indian IT services exports to EU is about 60 billion euros. It's 60-70 billion euros. So it's also a big number. So I think these strategies seem to be paying off.
चलिए लेते हैं अगली खबर. भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा मौद्रिक नीति समीक्षा के तहत RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हो गई. ये बैठक अगले 2 दिन तक चलेगी और RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा शुक्रवार को मौद्रिक समीक्षा के परिणामों की घोषणा करेंगे. पिछली 2 मीटिंग्स के बाद कोई रेट कट, मतलब रेट्स में कोई भी चेंज नहीं किया गया था, रेट कट की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी और इन्फ्लेशन अब रिकॉर्ड लो पे आ गई है 0.25%, और ग्रोथ भी जो लास्ट क्वार्टरली आए हैं सितंबर क्वार्टर के फिगर्स 8.2% अच्छी ग्रोथ है. तो ऐसे में क्या लगता है आपको, फिर से पॉज होगा या क्या फैसला लेगा आपके अनुसार RBI?
मुझे लगता है उनके ऊपर एक फील गुड फैक्टर का जो जरूर दबाव होगा, तो हो सकता है कि मुझे लगता है कि एक 25 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट कट एक और आ जाए. एक फील गुड फैक्टर होता है, आप कॉन्फिडेंस देते हैं, साइकोलॉजिकल बूस्ट देते हैं मार्केट्स को, इकोनॉमी को, एंड दैट एवरीथिंग इज गुड एंड वी नीड टू नो push the paddle on the growth side. And obviously the comfort, obviously as you said, आप जो बात बोली आपने कि वो comfort आ कहाँ से रहा है, क्योंकि महंगाई record low पे है और ऐसे संकेत भी नहीं आ रहे हैं कि कहीं आगे जो है एकदम से कोई spurt आएगा महंगाई में. और इस समय अगर आप देखेंगे जो हमारे major import items भी हैं, अगर crude oil वगैरह भी हैं, तो उनके prices भी काफ़ी मतलब हमारे लिए फेवरेबल हैं. $60 billion पे वी कैन मैनेज डिस्पाइट थोड़ा बहुत रुपये पे जो प्रेशर भी है डॉलर की वजह से, बट डिस्पाइट दैट वी हैव गुड फॉरेस्ट रिजर्व. सो आई सी, मुझे लगता है कि RBI की तरफ से कुछ अच्छी न्यूज मिलनी चाहिए मार्केट को.
ऑलराइट, द रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025, वन ऑफ द फ्लैगशिप रीजनल इवेंट्स लीडिंग अप टू द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट स्लेटेड फॉर फरवरी 2026, वाज हेल्ड टुडे एट द स्टेट कन्वेंशन सेंटर इन शिलोंग. यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी Vaishnav said that government is organizing the regional AI impact conferences throughout the country, and in this conference in Shillong, the focus will be on people, planet and progress, which are the three pillars, the three sutras of the AI impact summit.
As a part of this mission, we have allocated 10,300 crore rupees over 5 years. We have created a common compute facility so that everybody can get access to AI resources, and more than 38,000 GPUs have so far onboarded at a fraction of the cost of the global cost, These common compute GPUs are now available to everybody for developing applications, for using, and for creating new knowledge. Our target is to train about 1 million people in AI skills, because that is going to define the employability in future.
So, बहुत ही important step है, skilling in AI. Definitely.
दुनिया मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ना केवल देश कंपनियां भी इतना इन्वेस्ट कर रही हैं और शायद इसी वजह से हम लोग रीजनल ये कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं टू गेज द इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑन द बिजनेसेस ऑब्वियसली आल्सो ऑन द कंट्रीज.
श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि आज लगभग 64% नागरिक कम से कम एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करते हैं, जिससे भारत दुनिया में नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लाभ देने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है. आज नई दिल्ली में इंडिया एज 2025 सम्मेलन में उन्होंने पुराने श्रम कानूनों को नई श्रम संहिताओं में समेकित करके वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए श्रम कानूनों में बदलाव लाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि ये सुधार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने, श्रमिक कल्याण सुनिश्चित करने, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और उद्योग श्रम सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए हैं. इनमें अनिवार्य नियुक्ति पत्र, महिलाओं के लिए समान वेतन प्रावधान, 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच, ग्रेच्युटी के लिए एक वर्ष की पात्रता, एकीकृत पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्रणाली और एकल कर्मचारी वाली फर्मों के लिए भी विस्तारित कर्मचारी राज्य बीमा कवरेज शामिल है.
Global crude oil prices rose today after Russia said talks with US officials in Moscow failed to reach a compromise on a potential Ukraine peace deal. Brent crude was trading 1.1% up at $63.14 per barrel, while WTI crude was also trading 1.3% up at $59.40 per barrel when reports last came in. So that briefly, I want to make a point that Dmitry Peskov, Kremlin spokesman, said that Indian purchases of Russian crude oil may decline for a brief period because of Western sanctions. Do you agree?
Yeah, obviously, because the two main companies, the Russian companies, have been sanctioned by the US. And I think we as India as a country has also indicated that it won't be buying Russian oil in those large quantities that it was already doing.
So, aapko kya lagta hai? Kaun sa level hai, threshold level hai? क्रूड ऑयल का हमारे लिए जो हमारे लिए कंफर्टेबल है.
सी सोनू, एनीथिंग अराउंड अप टू 70, 73, 75 तक वी आर वेरी कंफर्टेबल. बट यस, अभी क्या हुआ है, थोड़ा सा रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, तो प्रॉब्ली अ लिटिल लोअर लेवल आल्सो कुड इज समथिंग विच कुड बी मैनेजेबल. बट अभी तो हम बहुत दूर हैं उस लेवल से. आई डोंट थिंक द वर्ल्ड डिमांड द वे इट इज, वी शुड बी, वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दीज करेंट लेवल्स.
रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इज कमिंग हियर ऑन अ टू डे विजिट ऑन थर्सडे. What are you hopeful about? Some inroad into the we've always talked about Indo-US deal. Now what about the Indo-Russia relations?
See, I think Indo-Russia. I think obviously they basically want India to continue buying Russian oil. I think the other focus area would be the civil nuclear program that we are having with them. They want to transfer more technology, civil nuclear technology, to India. Plus, also the trade, which is also currently completely in favor of Russia, to try to balance it.
Right.
अब चलते हैं गोल्ड प्रेशियस मेटल्स.
या इन द इंडियन बुलियन मार्केट 24 कैरेट गोल्ड वाज ट्रेडिंग ओवर 0.5% अप एट 1,30,490 रुपीस पर 10 ग्राम्स. एंड सिल्वर ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 0.7% अप एट 1,82,410 रुपीस पर किलोग्राम अ शॉर्ट वाइल अगो.
उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार मिलने तक दिसंबर अनुबंध वाला सोना 0.3% वृद्धि के साथ 1,27,720 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 0.7% से अधिक बढ़कर 1,77,818 रुपए प्रति किलो पर थी. समय समाप्त हो रहा है, सो हमें प्रोग्राम को भी यही समाप्त करना होगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिद्धार्थ आने के लिए.
धन्यवाद.
एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस लॉग लॉसेस. सेंसेक्स फॉल्स 31 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 26,000 लेवल. Asian stock markets end mixed and global crude oil prices rise. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Sonu Sood signing off. So it's Namaskar.
Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market.